मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज अपने जीवन के उत्थान के लिए रोज हम विचार करते हैं और उस विचार करने का उद्देश्य एक ही है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने का ये विचार अत्यंत सुदृढ़ और स्थिर हो। इसी उद्देश्य और इसी भावना से हमने पिछले दिनों बहुत प्रकार से जो जैसी भूमिका में है वो वहीं से शुरू करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है, ऐसी बहुत सी बातों पर विचार किया है। और ये विचार मेरे जीवन में सुदृढ़ हो, इस बात के लिए भी हमने 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना शुरू किया है। आज हम एक बार फिर से ध्यान दें, हमने पहला विचार संसार की संयोगों की नश्वरता का किया था। संसार में जो संयोग हैं वे हमें सुरक्षा नहीं दे सकते, वे हमें मरण से नहीं बचा सकते। मरण यदि अनिवार्य है तो ये एक सच्चाई है, और मरण से कोई नहीं बचा सकता यह एक दूसरी सच्चाई है। इन दोनों बातों को समझकर हम किस बात की तैयारी करें? नश्वरता के बीच भी कुछ है जो शाश्वत है। तमाम संसार में कहीं कोई शरण नहीं है, इसके बावजूद भी कुछ है जो शरणभूत है। मेरा आत्मा ही शाश्वत है, वही मेरे लिए शरणभूत भी है। मेरी अपनी अज्ञानता ही मेरे संसार में भ्रमण का कारण है, मेरे सुख दुख का कारण भी मेरा ही अपना मोह है। मुझे अपनी इस अज्ञानता और मोह का विचार करके उससे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मुझे इस संसार में सुख दुख मिलता है मेरी अज्ञानता और मोह के कारण, लेकिन लगता यह है कि कोई और मेरे सुख में कारण है, कोई और ही मेरे दुख में कारण है। और कई बार ऐसा लगता है कि मेरे सुख को बांट लेगा कोई, मेरे दुख को भी बांट लेगा कोई और। लेकिन हम देखते हैं कि यहां इस संसार में कोई कितना भी हमारा अपना क्यों ना हो, अपने सुख दुख भोगते समय हम अकेले ही रह जाते हैं। हमारा अपना शरीर जो कि हमें जन्म से मरण तक साथ देता है, वह भी एक गति से दूसरी गति जाते समय यहीं छूट जाता है। वह भी मेरे से भिन्न ही है। मुझमें और उसमें अगर अंतर नहीं होता तो मेरे एक गति से दूसरी गति जाने में मेरा शरीर भी साथ जाता, लेकिन शरीर साथ नहीं जाता, शरीर तो यहीं छूट जाता है। जीवन भर मैं जिसे अपने साथ मानता हूं वह भी मेरा नहीं है, वह भी मेरे साथ नहीं है, वो भी मेरे से पृथक है। यह अनुभूति मुझे क्या देती है? यही कि जब वो पृथक हो जाए तो मैं दुखी नहीं हूं, उसके संयोग में मैं हर्ष न मानूं, इतना ही है। वो तो मेरे से पृथक है, उस पृथक चीजें, उन पृथक चीजों के संयोग और वियोग में मैं व्यर्थ ही हर्ष विषाद क्यों करूं? जो मेरा है वो मेरे से तो कभी जुदा नहीं होता, जो मेरा है मुझे कहीं और से ला करके उसका संयोग नहीं जुटाना पड़ता, वो तो मेरा अपना है। तो उसके अपने के होने और नहीं होने में का कोई भय ही नहीं है। ये तो मेरे से पृथक चीजें हैं जिनके होने के लिए प्रयत्न करता हूं, जिनके नहीं होने पर निराश हो जाता हूं। यह जो अन्यत्व की भावना है मुझे यही सिखाती है कि मैं इन पर पदार्थों में अपनेपन का जो भाव रख करके सुख दुख का हर्ष विषाद का अनुभव करता हूं वो ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, ये शरीर जिसे मैं सुबह से शाम तक संभालता हूं इसके संभालने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि इसमें रहने वाली चेतना के संभालने की है, क्योंकि ये सीरियंते इति शरीराणि, निरंतर जीर्ण शीर्ण होते जाना इसकी नियति है, इसका स्वभाव है और अत्यंत पवित्र है ये। मैं इसकी पवित्रता का या इसके संभालने का विचार करूं ये ठीक नहीं है, मैं इसे साफ सुथरा रखूं और इसका सदुपयोग करूं, ये विचार मेरे भीतर आना चाहिए। निरंतर मेरे मन वाणी और शरीर के द्वारा मेरे अंदर संस्कार आते रहते हैं, भले बुरे सब प्रकार के संस्कार मेरी चेतना पर पड़ते हैं, वे संस्कार ही मुझे इस संसार में भटकाते हैं। मैं क्या उपाय करूं अपने ज्ञान और वैराग्य को जागृत करूं जिससे कि मन वाणी और शरीर को एक निश्चित दिशा दे करके अपने मिथ्या कर्मों के प्रवाह को तो रोक ही लूं, कम से कम जो भले कर्मों का प्रवाह है उस प्रवाह को तो रोका नहीं जा सकता। जब मैं अपने उस स्वभाव को प्राप्त कर लूंगा तो वो प्रवाह अपने आप रुक जाएगा। ऐसा विचार करके मैं अशुभ के प्रवाह को रोकने के लिए ज्ञान और वैराग्य को धारण करूं, और इतना ही नहीं, जो मैंने अज्ञानतावश अपने जीवन में भले बुरे संस्कार इकट्ठे कर लिए हैं या हो गए हैं मेरे अज्ञानतावश जो इकट्ठे, मैं उनको भी धीरे धीरे हटाने के लिए इच्छाओं का निरोध करने रूप तप धारण करूं, ऐसी मेरे भीतर भावना उत्पन्न होनी चाहिए, ये विचार मेरे भीतर बना रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस संसार में मैं छोटी सी गृहस्थी बना लेता हूं, सोचता हूं कि मैं ही इस गृहस्थी को चला रहा हूं। अरे भाई, छह द्रव्यों से मिलकर बना हुआ लोक कौन इसे चलाता है, कौन इसे बनाता और मिटाता है? ये तो बहुत स्वाभाविक संरचना है। मैं व्यर्थ ही जो है एक गृहस्थी चलाने का अहंकार करता हूं, और जब नहीं ठीक से चला पाता हूं तो निराश होकर संकलेश कर लेता हूं, ये ठीक नहीं है। ये तो अपने अपने पुण्य पाप का फल, यहां जो भी एक साथ भी रहते हैं वे भी एक साथ रहने वाले भी अपने पुण्य पाप का फल अपने कमाए हुए संस्कार के अनुरूप ही करते हैं। मैं व्यर्थ ही करता बना यहां फिरता हूं, यह लोक तो मेरे ही आत्मा का विस्तार है, सो मुझे इस लोक के स्वरूप के साथ साथ अपने आत्मा के स्वरूप का भी विचार करना चाहिए। और जैसे कि इसमें सारे द्रव्य अपनी अपनी स्वाभाविक स्थिति को बिना छोड़े हुए और प्रणमन करते हैं, मैं ही एक हूं जिसने अपनी स्वाभाविक स्थिति को छोड़ करके वैभाविक प्रणमन करना शुरू कर दिया है। जरा विचार तो करूं कि मैं इस राग द्वेष में ही फंसा रहूंगा या कि क्षण भर निकाल करके वीतरागता का स्वाद लेऊंगा। बस ऐसा एक विचार मेरे भीतर इस लोक भावना के चलते। और इतना ही नहीं, हमने तो कल बैठ करके ये भी विचार किया था कि इस संसार में बहुत चीजें हैं जिनको कि मैं दुर्लभ मानता हूं, जिनके लिए इकट्ठा करने के लिए पुरुषार्थ करता हूं, और पुरुषार्थ से भी मुझे सुलभ भी हो जाती हूं, कई कई बार सुलभ हो गई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, जो अत्यंत दुर्लभ है, वो रत्नत्रय, और उस रत्नत्रय का प्रतिफल केवल ज्ञान मेरे लिए अभी भी दुर्लभ है। मैं इस मनुष्य पर्याय में ही वह प्राप्त हो सकता है, इसलिए इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के साथ साथ और उस बोधि की प्राप्ति की दुर्लभता को भी समझूं। एक विचार मेरे भीतर उसे भी प्राप्त करने का बना रहे, बोधि ही तो धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही बोधि है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है। मुझे उस बोधि की प्राप्ति जो कि अत्यंत दुर्लभ है वो तो करनी है, ये भावना मेरे भीतर आ गई, लेकिन उस बोधि की प्राप्ति का उपाय क्या है, वो धर्म है। अब आज मुझे उस बोधि की प्राप्ति के उपाय और उस बोधि की प्राप्ति होने पर उसकी महिमा, उसकी उपासना, आराधना और उसकी भावना भी भाना चाहिए। इसी का नाम है धर्म अनुप्रेक्षा। जब रत्नत्रय की प्राप्ति, रत्नत्रय की महिमा, रत्नत्रय की आराधना, उपासना और भावना का हम निरंतर विचार करते हैं, वही तो है धर्म भावना। जे भाव मोहते न्यारे, द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिए धारे, सो ही सुख अचल निहारे। मेरे अपने शाश्वत सुख के लिए मुझे धर्म धारण करना चाहिए। शाश्वत सुख मेरा अपना स्वभाव है, धर्म भी मेरा अपना ही स्वभाव है, मेरी अपनी स्वाभाविक अवस्था ही मेरा धर्म है। और वो किस रूप में है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन रूपों में है, इसलिए मुझे उसकी महिमा जाननी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। रत्नत्रय की महिमा जानना, रत्नत्रय की उपासना आराधना करना, और इतना ही नहीं रत्नत्रय की प्राप्ति की भावना करना। यह एक विचार हमारे जीवन में निरंतर बना रहे, सुबह से शाम तक, कभी कभी बीच बीच में ये विचार एक अंतर मुहूर्त के लिए चले तब स्थिर होगा ये हमारे भीतर। अभी तो क्षण भर को आता है कि मैं भी रत्नत्रय प्राप्त करूं, सुनते हैं बड़ी महिमा है, इससे तो ऐसा सुख मिलता है जिसके साथ में फिर कभी दुख नहीं मिलता है, तो बड़ी अच्छी चीज, काम की चीज है, ऐसा भाव तो आता है। लेकिन यह रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, अभी तो मुझे और काम है, दृढ़ता नहीं आ पाती। उस रत्नत्रय की भावना में दृढ़ता लाने के लिए, उस विचार को सुदृढ़ बनाने के लिए हम विचार रोज रोज करें कि मुझे रत्नत्रय प्राप्त करना है, क्योंकि वही मेरे लिए दुर्लभ है और वह दुर्लभता मेरा स्वभाव है, मेरी अपनी स्वाभाविक स्थिति है। जैसे कि किसी को यह मालूम पड़ जावे कि मैं व्यर्थ ही चार चार आने पैसे दूसरे से भीख मांगता रहता हूं, जबकि मेरे घर में तो खुद खजाना भरा हुआ है, ऐसी अपने स्वयं के समृद्धिवान होने की बात मेरे मन में आ जावे, यही मेरे अपने धर्म की महिमा है, वो अगर समझ में आ जावे तो मुझे उस धर्म को प्राप्त करने में सुविधा होगी। हमने एक उदाहरण पढ़ा था और सामने देखा भी अपने जीवन में, कोर्ट जाते थे तो वहां पर नीचे एक मांगने वाला भिखारी वर्षों से बैठा रहता था, वर्षों हो गए थे मेरे अपने जीवन में, मैंने देखा और मेरे से जो बड़े उम्र में है उनने भी देखा कि वो वर्षों से वहीं बैठा भीख मांगता रहता, और दो दो आने पैसे, एक आने पैसे लोगों से उसको मिलते, उसी में उसका जीवन चलता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो मरा पाया गया, अब कौन उसका संस्कार करे, जैसे तैसे चार आठ लोगों ने मिलकर के संस्कार कर दिया, फिर अब वहीं रहता था, वहीं खाता पीता, गंदगी करता था, तो स्थान जरा अशुद्ध हो गया था, लोगों ने सोचा कि जरा साफ और करवा दो भाई, साफ किया, साफ किया तो साफ करने वालों ने ऊपर ऊपर की मिट्टी भी हटाने की सोची कि बड़ा गंदा हो गया है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा के अलग कर दें, सो मिट्टी हटाई, सो उसमें असरफियां निकलनी शुरू हो गई सोने की। तब लोगों को हंसी भी आई और रोना भी आया कि जिंदगी भर खजाने के ऊपर बैठा एक एक पैसा मांगता रहा, वो तो उसकी चर्चा है। हम भी अपने भीतर के खजाने को भूल करके बाहर एक एक चीज के लिए सुबह से शाम तक दौड़ते भीख जैसी मांगते, और अगर हमें अपने भीतर के खजाने की महिमा मालूम पड़ जाए कि वह जो रत्नत्र है, रूप धर्म है, वह तो मेरी स्वाभाविक अवस्था है, मैं कहां उसे भूल गया हूं, अगर थोड़ी उसकी याद दिन भर में आ जावे तो बड़ा गौरव महसूस होगा कि अरे कहां इस संसार के प्रपंच में पड़ा हूं, कहां राग द्वेष में पड़ गया, मेरा स्वभाव तो वीतरागता का है। ऐसा अगर वीतरागता की महिमा का भान हमारे लिए निरंतर विचार की प्रक्रिया से होने लगे तो फिर क्या करूंगा, उसी की आराधना करूंगा, उसी की भावना भाऊंगा, उसी की उपासना करूंगा अपने उस वीतराग स्वरूप की, फिर काहे को जिस तिसके यहां पर जाऊंगा माथा टेकने के लिए। नहीं, जहां रत्नत्र है वो मेरे लिए पूज है, पूजता तो रत्नत्र से आती है और रत्नत्र मेरी अपनी स्वाभाविक अवस्था है, मैं भी उस पूजता को प्राप्त कर सकता हूं, उस रत्नत्र को प्राप्त कर सकता हूं और उसके फलस्वरूप बोधि को प्राप्त कर सकता हूं। ये एक निरंतर विचार की प्रक्रिया हम चाहें तो कर सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने क्रम क्रम से इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए उपाय बताया है। जरा उपाय भी समझ ले, महिमा तो समझ ली, उपाय क्या है, लेकिन उपाय का एक क्रम है। बत्थु स्वभावो धम्मो खमादि भावो यदस बिहो धम्मो रैनत्यम च धम्मो जीवानम रखनो धम्मो। ये एक गाथा में धर्म के स्वरूप को आचार्य भगवंतों ने, कार्तिकेय स्वामी ने स्पष्ट किया है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, क्षमा आदि दस भावों को धारण करना धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, जीवों की रक्षा करना धर्म है। शुरू कहां से करना पड़ेगा? शुरू तो नीचे से करना पड़ेगा। हां, पहुंचना कहां है? जहां से शुरू किया है। मेरा स्वभाव ही मेरा धर्म है, पहुंचना वहां है, लेकिन उपाय क्या है पहुंचने का? अकेले कहने से नहीं प्राप्त होगा। बिभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शुभम वांछति नास्ति लाभा। रोज मुक्ति की कामना करो, अकेले कामना करने से कोई चीज मिलती तब तो बड़ा मजा था, हमने चाहा और मिल गया। खतरा भी बहुत है इसमें, किसी दिन नदी ये चाहे कि जिंदगी हो गई बहते बहते अब ठहर जाऊं, मुश्किल पड़ जाएगी। और किसी दिन पहाड़ ये सोचे कि इतने दिन से खड़े हैं थोड़ा चले, वो कामना फलीभूत हो जाए तो अपन को मुश्किल हो जाएगी। नहीं, कामनाएं ऐसे फलीभूत नहीं होती। विभेति मृत्यु, आप डरते रहो मृत्यु से लेकिन आएगी, और कामना करते रहो मोक्ष की, नहीं मिलने वाला ऐसा, उपाय करना पड़ेगा। हम रोज रोज भावना भाएं अपने स्वभाव की लेकिन उपाय बिल्कुल ना करें तो क्या स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। स्वभाव को ध्यान में रखा जाता है, स्वभाव को लक्ष्य की तरह से जाना जाता है कि मेरा अपना स्वभाव ही मेरा धर्म है और मुझे उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए उपाय क्या करना है। प्राणी मात्र के भीतर ऐसा ही धर्म विद्यमान है, इसलिए मुझे उस धर्म की सुरक्षा करना यानी प्राणी मात्र की रक्षा करनी चाहिए, यहां से मेरा धर्म शुरू होगा। लेकिन इसको तो हम कह देते हैं कि व्यवहार है, ये तो है ना, ये तो व्यवहार धर्म है। माने व्यवहार है मतलब कि अब जैसे कहते हैं अपन उससे तो ये लगता है कि कोई काम करना, लेकिन आचार्य भगवंत तो वहीं से शुरू करने का कह रहे हैं। शुरू वहीं से करना पड़ेगा, प्राणी मात्र के प्रति करुणा मैत्री और दया का भाव आए बिना अपने स्वरूप की प्राप्ति आज तक किसी को नहीं हुई। हुई हो तो कहीं बता दे। प्राणी मात्र के प्रति अभी तो अपन का अपने परिवारजनों के प्रति है मैत्री का भाव, प्रेम का भाव, वो नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा और मैत्री का भाव आ जाए, यहां से हमारे धर्म की शुरुआत होगी। और जब बहुत सघन हो जाती है यह भावना तो फिर घर गृहस्थी में होने वाले हिंसा इत्यादि को देख करके मन तड़प उठता है कि भाई ये तो दया और करुणा मेरी इस घर गृहस्थी में रहकर पूरी तरह न पालन हो सकेगी, तो कहते आगे बढ़ो। उसी दया और करुणा को पूरी तरह, उसी अहिंसा को पूरी तरह पालन करने के लिए रैनत्यम च धम्मो, रत्नत्रय की प्राप्ति करो। इस तरह रत्नत्रय की प्राप्ति करवा दी उस दया के चलते। आचार्य भगवंतों ने मुनि महाराज के लिए लिखा कि जाति जरूर रोग मरणातुर शोक शास्त्र दीपिता दुस्सह नरक पतन सन त्रस्त दिया प्रतिबुद्ध चेतसा जीवितम अंबु बिंदु चपलम तड़दभ्रसमा विभूतया सकलम इदम विचिंत मुनिया प्रश्माय बनांतम आश्रिता। क्यों कोई मुनि बन करके और बन का आश्रय ले लेता है? क्योंकि उसके भीतर इस संसार की नश्वरता का, और इतना ही नहीं मेरे द्वारा किसी जीव का विघात ना हो जावे, ऐसी दया का भाव जब उत्पन्न होता है तो सबसे विरक्त होकर के रत्नत्रय धारण करके बनांतम आश्रित अर्थात सबसे विरक्त हो जाता है। ये विरक्ति कहां से आई? उस दया और करुणा की प्रबलता से आई। इसलिए आसान सा उपाय है कि मेरे भीतर दया और करुणा का भाव तेजी से बढ़ना चाहिए, जीवन में प्रकट होना चाहिए। मेरे भीतर कितनी दया है अपन देख लें, जितना अपना स्वार्थ सत्ता है उतना ही अपनी दया है। जो उनसे अपना स्वार्थ नहीं सत्ता उनके प्रति क्या दया करना, जो हमारे काम ही नहीं आते उनके प्रति क्या दया। ऐसा नहीं, दया तो सबके प्रति, करुणा तो सबके प्रति है। फूलों की सुगंध बिखेरते समय फूल ये नहीं सोचते कि ये ज्ञानवान है इसको ज्यादा दे दो, जी अज्ञानी है इसको रहन दो, जी बड़े आदमी है इनको दे दो, ये गरीब आदमी है इसको मत दो। ऐसा करता है क्या? नहीं करता। ऐसा ही मेरे जीवन में करुणा का भाव, दया का भाव आना चाहिए। मैंने आपको एक घटना शायद सुनाई है, नहीं सुनाई। एक छोटा सा बेटा, उसको खरीदना था पालने के लिए अपने घर में कुत्ता। वैसे नहीं पालना चाहिए, मांसाहारी जीवों का जो पालन करते हैं उनके घर में सूतक निरंतर लगी रहती है, इसलिए वह घर किसी भी पूजा पाठ और दान इत्यादि के योग नहीं है। ये ध्यान रखना, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, 12वीं शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ है उससे बोल रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है कि जिसके घर में मांसाहारी जीव पाला जाए उसके घर में निरंतर सूतक है, इसलिए वहां दान पूजा अनुष्ठान इत्यादि उस घर के लोग कर ही नहीं सकते, उस घर में प्रवेश तक नहीं करना, साधु के लिए निषेध किया होगा। अगर कदाचित भूल चूक कोई अगर हो भी जावे तो प्रायश्चित ले लेना, क्योंकि वहां पर मांसाहारी जीव भीतर सब में घूमता रहता है, कुत्ता हो चाहे और बिल्ली हो चाहे जो आपने पाल रखी है। और अब कहानी में है इसलिए अपन को वो नहीं देखना है, अपन को तो उससे कोई और दूसरा संदेश लेना, नहीं तो आप ये संदेश ले लो इसलिए हमने कह दिया, नहीं तो आप ये संदेश ले लो। आप ही मैंने सुनाया था कि कुत्ता पालने के लिए ले गया था वो, तो हम भी तो ले आए एक तो कुत्ता पालने के लिए, तो पहले क्लियर कर दिया हमने। अब कहानी में है ही वैसे ही था वो, और सच्ची घटना है। वो जाता है जहां बहुत सुंदर सुंदर कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे बेचे जाते हैं, वहां पूछता है वो कि कितने कितने कीमत के हैं, तो $50 का एक कुत्ता। विदेश में ही बिकते हैं इसलिए डॉलर में बिकते हैं, ₹50 के बराबर है वहां उन लोगों के लिए। जैसे अपने को कोई चीज ₹50 की, वहां उनको $50 की, अपन को जरूर एक डॉलर की कीमत ₹48 $1 की, इतना ही है कि नहीं, कम ज्यादा हो गई, इतना ही है, 45 हो गई, ठीक। तो $50, तो उसने कहा कि मुझे खरीदना तो है लेकिन थोड़ा मैं इनके साथ खेल लूं क्या? तो उस दुकानदार ने सोचा कि अब छोटा सा बच्चा है, मन हो रहा है उसका, तो खेलने का क्या पैसा लेना, खेल लो। तो बहुत सारे बच्चे थे उसके उसमें, तो उन कुत्तों के साथ खेलने लगा। फिर एक कुत्ता गुमसुम सा कोने में बैठा हुआ था, वो किसी कुत्ते के साथ भी नहीं खेल रहा था, चुपचाप बैठा था। उसके पास गया, उससे खेलने लगा, तो वो कुत्ता भी थोड़ा खुश हुआ और इसके साथ खेलने लगा। उससे तो कोई भी प्यार नहीं करता था, अब वो दुकानदार से कहता है कि ये वाले कुत्ते का भी $50। उसने कहा इसका $50 वैसे तो इसका भी है पर मैं इसको बेचूंगा नहीं। अरे इसको क्यों नहीं बेचोगे? अरे ये काम का नहीं है। तो इसका क्या करोगे? इसको तो कोई घोड़ा गाड़ी वाला आएगा उसको दे दूंगा तो इसका काम फिनिश हो जाए। ऐसे सब समझ गए होंगे कि क्या करेंगे। घोड़ा वाला गाड़ी वाला आएगा उसमें भर के ले जाएगा और कहां ले जाएगा। तो उसने कहा कि अगर मैं इसको खरीदना चाहूं तो? बोले मैं बेच ही नहीं रहा हूं, तुम बेकार में कह रहे हो, जिद कर रहे हो। बोले नहीं मुझे तो यही चाहिए और ये $2 आप रख लो, मैं 48 अभी लेके आता हूं। दो उसके पॉकेट में थे। अब जब उसने सोचा कि पूरे $50 दे रहा है तो अपना क्या हर जाए, बेचना वैसे मुझे था नहीं इसको, इतना महंगा कोई लेगा भी नहीं, ये बच्चा कह रहा है कि मुझे यही चाहिए, ठीक है ले आओ। $48 और लेके आया, भागा भागा गया जल्दी से और कुत्ते को गोद में उठा करके $50 चुकता करके जब लौटने लगा तो दुकानदार ने कहा कि इतने प्यारे प्यारे और कुत्ते थे, ये तो बहुत डल बहुत सुस्त कुत्ता है, तुमने इसी को क्यों पसंद किया? और तुम्हें नहीं मालूम इसके चारों पैर नाकाम हैं, इसलिए इसके साथ कोई नहीं खेलता, ना ये किसी के साथ खेल सकता, फिर भी तुम इसे $50 ले लो, जो बहुत बढ़िया कुत्ते हैं, दौड़ भी लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं, उनको क्यों नहीं खरीद रहे? तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा मुझे तो यही चाहिए। दुकानदार कहता कि कारण बता सकते हो क्यों यही खरीद रहे हो? तो उसने कुछ ना कह के और अपना जो पैंट पहन रखा था उसे ऊंचा उठा दिया तो देखा कि उसका भी पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है। वो कहता कि मैं जानता हूं कि जिसके पैर नहीं होते उसके कितनी पीड़ा होती, इसकी पीड़ा मैं जानता हूं, इसलिए इसी को खरीद के ले जा रहा हूं, इसे कोई नहीं खरीदेगा, इसे कोई प्यार नहीं करेगा। ऐसी दया और करुणा सबके प्रति, जैसा मेरा जीवन है ऐसा ही सबका जीवन है, जैसे मेरे जीवन में सुख दुख है ऐसे ही सबके जीवन में सुख दुख है, अपने सुख तो सुख मालूम पड़ते, अपने दुख तो दुख मालूम पड़ते हैं, दूसरे का दुख दुख नहीं मालूम पड़ता। वो पढ़ने लगे तो सम्यक दर्शन का एक गुण है ये, दूसरे के दुख से अनुकंपित हो जाना, भीतर ही भीतर कांप जाना, अनुकंपा ये गुण है। यहां से धर्म की शुरुआत होती और फिर रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाने पर भी कहते क्षमा आदि भावों को धारण करना और वास्तव में तो अपने मन को ऐसा संस्कार देना जिससे कि वो अपने ही स्वभाव में रहे। मन को अच्छा संस्कार देना इसके दूसरे नंबर की बात है। उपाय है धर्म को धारण करने के लिए दया धारण करना, लेकिन दया कैसे आएगी जब मन को अच्छा संस्कार देंगे? जैसे कि दो तरह से संस्कार दिया जा सकता है, कोई अपना शत्रु हो तो एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि जब तक इससे मैं बदला नहीं ले लूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, और एक महापुरुष जब उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या विचार है तो बोलते कि ये मेरा शत्रु है, जब तक मैं इसे मित्र नहीं बना लूं जब तक चैन से नहीं बैठूं। ये मन के संस्कार की बात है, एक में धर्म है एक में अधर्म है। मन को धर्म का संस्कार देने का मतलब क्या है? इतना ही कि कोई मेरे साथ कितने ही अपकार करे मुझे उसका उपकार करते रहना है, यहां से धर्म आएगा। मन को ऐसा संस्कार, अच्छा संस्कार देना, ये अपन बहुत आसानी से करने वाली चीजें हैं। धर्म सिर्फ क्रियाएं दोहरा लेने का नाम नहीं है, धर्म तो मन में आने वाले परिवर्तन का नाम है, अपनी स्वाभाविक अवस्था का स्मरण आना है, राग द्वेष से बचने का नाम धर्म है, अपने आप को अच्छा संस्कार देने का नाम धर्म है। बच्चे पूछा करते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई के साथ धर्म कैसे करें, तो अपन उनसे अपेक्षा रखें कि वे मंदिर में अभिषेक करें और पूजा करें, कभी कर लेंगे जब छुट्टी का दिन होगा तब कर भी लेंगे, लेकिन रोज तो नहीं अपेक्षा रख सकते उनसे। तब उनको क्या, उनके मन में धर्म रहे, दूसरे के उपकार की भावना रहे, कभी भी मेरे द्वारा दूसरे का बुरा ना हो और मेरे अपने आपका भी मैं कल्याण ना करूं, यही मेरा धर्म है। मैं हित के रास्ते पर चलूं, ये मेरा धर्म है, और दूसरे को भी कल्याण का ही मार्ग बताऊं, उसको अकल्याण के मार्ग पर न लगाऊं, ये मेरा धर्म है। आज ये हो पा रहा है? इतना भी कर ले अपन, स्वयं को धर्म के मार्ग पर आगे ले जाना, धर्म से विचलित होने लगे तो अपने आप को धर्म में स्थिर बनाए रखने का पुरुषार्थ करना, ऐसा संस्कार निरंतर अपने आप को देना, तब जाकर के धर्म हमारे जीवन में से प्रकट होना शुरू होगा। वरना मन का संस्कार तो ऐसा है कि हमेशा आचार्य श्री ने लिखा कि मन तो श्वान के समान है। श्वान के समान कैसे है? कितनी आदत है उसकी, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें उसको खिला दो, रबड़ी दूध मलाई खिला दो, लेकिन आपकी आंख चूकी, पालतू भी कुत्ता क्यों ना हो, आपकी आंख चूकी और बिना गंदगी खाए रहेगा नहीं। नाली में से पानी पिए गई, आप कितने बढ़िया फिल्टर वाटर पिलाओ पिलाओ, लेकिन उसको मौका मिलते ही साथ वहीं जाएगा। पे स्वान सा मन मल सोध लाता, ये लिखा है। मन भी ऐसा ही है कि वो हमेशा और अपने स्वभाव से विचलित होकर के और अन्यत्र ही जाना पसंद करता है। जिसमें अकल्याण है उसी में मन जाता है, कल्याणकारी चीज में नहीं जाता है। भावना या संस्कार मेरे ऐसे बने रहें कि अगर मैं कल्याण के मार्ग पर नहीं चल रहा हूं तो कम से कम अकल्याण के मार्ग से तो बचता रहूं, तब मेरे जीवन में धर्म आएगा। ये उपाय है धर्म को धारण करने का। जब जब भी मेरे मन में अहित का विचार आ जावे, मैं अपने उस संस्कार को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दूं, पोस्टपोन कर दूं, मन के मिथ्या विचारों को बाद में करूंगा, यह एक बहुत सशक्त परिवर्तन का विचार है। और मन के समीचीन विचारों को तुरंत ही फॉलो करूंगा। अगर यह प्रक्रिया अपने मन में धारण कर लें, फिर देखिएगा धर्म कैसे नहीं आता है। हम लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत क्रियाएं करते हैं धर्म की, लेकिन अंतरंग में हमारे यह बात पता नहीं क्यों संस्कार ऐसा नहीं आ पाता है। और जब जब भी हमारे सामने और थोड़ी सी सांसारिक उपलब्धियां आने लगती हैं, हम अपने धर्म को भी भूल करके अधर्म में चले जाते हैं। ऐसा क्या करें हम सुबह से शाम तक कि थोड़े से सांसारिक लोभ लालच में मैं अपने धर्म से विमुख ना हो, मेरा संस्कार इतना प्रबल हो जावे कि कोई अगर मेरे से बेईमानी के लिए करे कहे तो मैं कर ना पाऊं, मेरी अपनी ईमानदारी मेरा अपना धर्म उसमें मैं अडिग रहूं। यही है उपासना, यही है आराधना धर्म की, और कुछ नहीं है। दुकान पर बैठ करके भी धर्म की आराधना की जा सकती है। कैसे? मैं दूसरे के साथ धोखा नहीं करूंगा। तब ये मैं क्या कर रहा हूं? दुकान नहीं चला रहा हूं, मैं धर्म की आराधना कर रहा हूं। जैसे मंदिर में बैठ करके भगवान के गुणगान करते हैं, उन्हीं गुणों को मैं अपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, तो ये भगवान की पूजा ही तो कर रहा हूं। इस तरह हम चाहें तो इस रोजमर्रा के जीवन में धर्म को बहुत आसानी से धारण कर सकते हैं। और अच्छी चीज को तुरंत कर लेना चाहिए। जब जब भी कोई अच्छा विचार आवे तो तुरंत उसको कर लेना चाहिए। ये तीसरी चीज, कल पर पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। अपन लोग धर्म को हमेशा कल पर टालते हैं और अधर्म को तुरंत करने के लिए तैयार। सच्ची तो कल बोलूंगा, झूठ आज बोल लूं क्योंकि लाभ उसमें दिख रहा है, तो झूठ पहले बोल लेते, सच को स्थगित करते रहते, पोस्टपोन करते रहते। ये थोड़ा सा विचार अपने भीतर आ जाए कि नहीं, क्यों नहीं, इसको मैं पहले करूं, मैं उसको बाद में करूंगा, गलत को बाद में करूंगा, सही को तो आज ही कर लूं और अभी कर लूं। ये एक तीसरा कदम है अपने आप को अच्छा बनाने का। और आखिरी बात, धर्म को तो धारण करने से आता है। मैंने कितना अपने जीवन में उन सब बातों को धारण किया है, इस पर भी तो विचार करूं। विचार ही करना, अभी और कुछ नहीं कर रहा हूं, घबरा मत जाना आप। सिर्फ विचार कर रहा हूं, नहीं तो आपको करने वरने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। करने करने का तो बहुत बहुत कर चुके, कितनी सारी चीजें नहीं करी, लेकिन विचार ही नहीं है। बिना विचार के चाहे जो करते रहो, कितने पूजा पाठ कर लो बिना विचार के, लेकिन विचार है ही नहीं मन में कि मेरे जीवन को मुझे अच्छा बनाना है, बस करना है, चार लोगों के लिए दिखाने के लिए करना, क्योंकि थोड़ा बोला पुण्य अर्जित हो जाएगा इसलिए करना है, थोड़ी दुकान अच्छी चलेगी पूजा करने से इसलिए करना है। ऐसे तो कई बार कर चुके, मेरे अपने धर्म को मुझे जैसे कि सांस मेरे लिए अनिवार्य है, जैसे कि पानी पीना मेरे लिए अनिवार्य है, जैसे सांस नहीं मिलने पर, पानी नहीं मिलने पर मेरे घुटने टिक जाते हैं, मुझसे काम नहीं होता, ऐसे ही मुझे लगने लगे कि अगर मैं अपने धर्म को नहीं धारण करूंगा तो घुटने टिक जाएंगे मेरे, फिर मेरे से नहीं जिया जाएगा। इतनी इतनी अत्यंत आवश्यक चीज हो जाए ना मेरा अपना स्वभाव, मेरे से नहीं होता राग द्वेष, ऐसा कह पाए अपन, नहीं मेरे से नहीं होती ये बीतरागता, मेरे को नहीं है समता अमता, ये तो कह देता हूं, लेकिन उस अब ये कहना शुरू करूं मेरे से नहीं होता ये राग द्वेष, मेरे से नहीं होता ये हर्ष विषाद लावानी, ठीक है सब में बराबर रहना चाहिए, कोई क्षोभ नहीं करना चाहिए, ऐसा आता है क्या? ये आने लगेगा, जो कठिन नहीं है, अगर विचार अगर मन में आ जावे तो आचरण में धीरे धीरे करके आएगा, विचार में अभी तो विचार में ही लाना पड़ेगा। एक छोटी सी घटना आपको बताऊं, उससे थोड़ी सी बात अपनी स्पष्ट हो जाएगी। मैं रिकॉल कर रहा था एक्चुअली कि मैंने आपको सुनाई है कि नहीं सुनाई है, अगर सुनाई भी होगी तो भी क्या कर सकते हैं, अब वो उसके अलावा दूसरी कोई याद ही नहीं आ रही। मैं बहुत सोच रहा हूं, आपसे बोल भी रहा हूं और सोच भी रहा हूं कि कोई कहीं से ढूंढ ढांढ करके और आ जाए, लेकिन बार बार वो ही आती है। हुआ क्या, कैसे हम टालते हैं अच्छी चीजों को। एक जगह पर बहुत आंधी पानी तूफान आया और सब मकान वकान भी ढह गए, मलबा हो गया। जब राहत कार्य शुरू हुआ तो मलबे में से लोगों को निकाला गया तो देखा कि कुछ जिंदा लोग भी हैं। हंसी आई इसमें, जब मैंने पढ़ा था तब भी हंसी आई थी, लेकिन अपने को अपने जीवन पर लागू करेंगे तो जरा छटपटाहट होगी कि अरे अपन भी तो यही कर रहे हैं और उसको बुद्धू समझ रहे हैं। हुआ कुछ नहीं, वो दो दिन के बाद तो वो ढूंढ पाए उसको मलबे में से, उसकी सांस चल रही थी, उसको होश में लाए और देखा तो उसके हाथ में उसने दो रोटियां दबा रखी। हाँ, और जब होश में लाया गया उसको तो उनके पास तो कुछ खाने पीने को नहीं था, तो उससे कहा कि भाई अब तुम होश में आ गए हो और कमजोर, दो दिन के भूखे हो, कमजोर हो गए, ये दो रोटियां खा लो। तो कहता नहीं ये नहीं खाऊंगा, ये तो मैंने बचा के रखी, कब के लिए, कभी कोई विपत्ति आएगी बहुत बड़ी, और अभी अभी तो विपत्ति आया, समझ में आपके, इतनी सी चीज है वो, मैंने सब चीजें बचा रखी है काय के लिए, मैं बचा रहा हूं इसके लिए और मैं मंदे लगूं और सारी चीजें बची रहे, इतना नहीं समझ में आता। इतना तो सबके समझ में आता भैया, मैं अपनी जान दे रहा हूं इन सब चीजों के लिए, अपना धर्म नष्ट कर रहा हूं इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए, इतना नहीं समझ में आता, दो चार पैसे के लिए अपना ईमान खत्म कर देता हूं मैं। अब तो आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से, लेकिन बाहर निकलने पर नहीं आएगा, यहीं तक आएगा वो, आता तो है समझ में ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर निकलने पर भी आने लगे, दुकान पर बैठ करके भी आने लगे कि कर क्या रहा हूं, फिर मैंने अपना धर्म बेचा चार पैसे के लिए, नहीं अब नहीं बेचूंगा, टू एनफ, बहुत हो गया, जितने की लाया हूं उतना मुनाफा लेकर के ये लो आप अपनी संभालो, मेरा काम तो सिर्फ ये है कि अपना दिन भर मेहनत करता हूं इसलिए उसका प्रॉफिट लूंगा, आपको चीट करना मेरा स्वभाव नहीं है, आपके साथ सद्भाव रखना मेरा स्वभाव है, आपको चीजें मुहैया करवाना मेरा काम है, इसलिए आपको चीजें मुहैया करवा रहा हूं, मैं दुकानदार हूं, मैं बेईमान नहीं हूं। ऐसा ईमान नहीं जागता अपने भीतर, जाग जाएगा उस दिन तो दुकान पे भी धर्म आ जाएगा, और कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है धर्म कि यहीं पर जब घंटी बजाएंगे और मां धारा छोड़ेंगे तभी धर्म होएगा, नहीं वो तो जीवन में प्रति क्षण, चाहे रास्ते में हो चाहे भोजन कर रहे हो तब भी हमारे मन में धर्म बना रह सकता है, हर समय बना रह सकता है, ऐसे धर्म को ही हमें धारण करना चाहिए। एक धर्म के धारण करने की घटना सुना करके बात पूरी कर देता हूं, फिर कल से क्या करना चाहिए अपने को और फिनिश कर देना चाहिए, हो गया सारी चीजें बहुत हो गई, मैं बहुत सोच में हूं कि फिर अब कल से क्या करूंगा, आज तो ये 12 भावना पूरी हो गई, 16 कारण भावना, वाह मतलब 16 दिन का हिसाब, अब उतना समय नहीं है, और हो भी सकता है कहो भैया जी लौट के आए, अभी तो इंतजार कर रहे हैं सब, मैं भी कर रहा हूं कि देखें क्या कहते हैं, देखेंगे रोज अच्छा विचार करने के लिए तो बैठना ही चाहिए। एक सभा में एक बाबा जी रोज प्रवचन करते थे, धर्म की बातें सुनाते थे, और उनकी आदत थी कि दो वृद्ध और वृद्धा जब तक सभा में आके नहीं बैठते थे तब तक वे सभा ही शुरू नहीं करते थे। और बहुत लोग आ जाते थे, फिर भी वो कहते थे अभी ठहरो, थोड़ा ठहरो, तो लोगों को बड़ा बेकार लगता था। लगना भी चाहिए, ऐसा पक्षपात क्यों करना चाहिए बाबा जी वगैरह लोगों को, साधुओं को, लेकिन बाबा जी हैं तो अब बाबा जी उनको क्यों कहें। वैसा पक्षपात करते थे, सबको ही लगता था पक्षपात करते हैं, जब जब वो वृद्ध और वो अपुरुष आ जाएंगे तभी शुरू, क्या हम लोग क्या फोकट ऐसे ही हैं क्या, ऐसा लगता है लोगों, हम तो आ गए हमें सुनाना शुरू करो। लेकिन बाबा जी हैं कि वो अपनी चाल नहीं छोड़ते, वो जब आ जाते तो सुनाते। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत देर हो गई, 2, 5, 10 मिनट, आधे घंटे हो गया, बाबा जी भी बैठे हैं, अभी नहीं सुनाएंगे धर्म की बातें, वो दोनों आ जाएंगे। उस दिन तो लोगों ने बहुत कानाफूसी करी, करते हैं लोग, जिनकी सामने कहने की हिम्मत नहीं होती तो वो कानाफूसी करते। हाँ और क्या, आप क्या सोच रहे थे कि अपन नहीं करते क्या, करते हैं, सब करते हैं। जो चीज अपन को अपने मन की पसंद नहीं आती उसको दूसरे से कहते हैं, अरे यार जी देखो तो ऐसा करते हैं, हमने तो चौका लगाया और दूसरे दूसरे लोग दे रहे, हम तो दे ही नहीं पाए, हम तो सवेरे से काम करते रहे। नहीं, ऐसे कानाफूसी पीछे रह कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, करते इनका अलग ही है, तो सब चाहे जिससे ले लेते हैं, यार पूछते नहीं है ना, नियम यम नहीं दिलवाते, ऐसी कानाफूसी। अब कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं थे, निकल ही आता है कोई, कितने भी कुछ करे आज के संसार में परफेक्ट कोई नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें से निकालने चाहे तो निकल ही आएगा जो अपने मन का नहीं होगा। उनको ये नहीं दिख रहा है कि बाबा जी उन दोनों का क्यों इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा क्यों इंतजार कर रहे हैं, क्यों उनके आने पर ही धर्म सभा शुरू होगी, ये विचार कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उनके जैसे हम क्यों नहीं है कि हमारे आने पर ही धर्म सभा हो, ये नहीं आएगा विचार। अब वो आधे घंटे बाद जब आए वृद्ध, बाबा जी ने धर्म की चर्चा शुरू करी, लेकिन आज तो सब लोग बिल्कुल भरे ही बैठे थे। उन्होंने कहा आज तो क्लियर कर लेंगे इस पार उस पार कि ये मामला क्या है। हाँ, तो बाबा जी से सबने घेर लिया कि अब आप बताइएगा, रोज रोज हम देखते देखते परेशान हैं, आज तो आधे घंटे इनके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसी कैसी क्या बात है इनकी, कहले उन्हीं से पूछ लो। अब लोगों ने कहा हाँ बात तो सही है, क्या बात हुई, आप आधे घंटे लेट कैसे आए। तुमने कहा कि हम बाबा जी आपसे क्या कहें, हम तो क्षमा मांगते हैं सबसे, और आपसे भी हुआ क्या कि हमारे घर में चोर घुसे रात में, तो वो जीवन साथी थी, वो कहने लगी हम पहले बताएंगे। उन्होंने कहा पहले हमें तो बता लें दो, इसी बात पे सुन तो थोड़ी देर हो गई, इसी इसी बात को लेकर कि वो जब चोर घुसे तो हमने अपनी जीवन साथी से कहा कि तुम हिलना डुलना मत, नहीं तो तुम्हारे हिलने डुलने से या हमारे हिलने डुलने से उनको मालूम पड़ जाएगा कि हम जग रहे हैं, तो बेचारे खाली हाथ लौट जाएंगे, ले लें दो जो कछु लेने से। हाँ ऐसा कहा हमने, अब सुनना आप। अब जब इतनी मेहनत करके आए हैं बेचारे अपने घर में और ऐसा क्या है अपने पास, ले जाने दो, इसलिए चुपचाप, तो बोले इनने हमारी ये बात तो मान ली, जीवन साथी ने चुपचाप पड़ी रही, मैं भी पड़ा रहा। लेकिन फिर वो जीवन साथी बीच में बोली कि महाराज हमें हमारी भी तो सुनो आप, पहले सुने पहले इनको सुनाने दो। कहते फिर क्या हुआ महाराज, उसने जो कुछ भी था वो सब लेना था ले लिया, अब लेकिन इनकी गलती मानेंगे हम तो, इनका हाथ हिल गया, इनने करवट बेदा बेकार बदल ली। चले हुआ क्या बताओ तो, बोले हुआ ये कि उसने सब चुराया, इनके हाथ में एक कड़ा था, वो जब इनको निकाल रहा था तो इनने करवट बदल ली। कहले महाराज अब ठहरो, अब हमें अपनी कह लेने दो, हमने करवट इसलिए बदली थी क्योंकि दूसरा हाथ तो नीचे दबा था, जब ऊपर आएगा तब तो दूसरे में से उतारेगा, तो हमने कहा उसको असुविधा ना हो इसलिए हमने करवट दे दी, उसमें भग जाए उतने में तो हमारा क्या दोष उसमें। अब वो जैसे हमने करवट बदली तो भग गया, अभी हमसे जब से नाराज है कि तुमने करवट नहीं बदली होती तो कम से कम शांति से ले तो जाता वो सब सामान। अब ऐसी घटना सुन करके बाबा जी ने कहा कि अब समझ में आया मैं क्यों इनका इंतजार करता हूं धर्म सभा में,
क्योंकि तुम धर्म सुनने आते हो, ये धर्म अपने जीवन में धारण करते हैं, इसलिए मैं इनका इंतजार करता हूं कि इनके आने पर ही मैं धर्म की बात सुनाऊंगा। धर्म की बात पहले उसी को सुनाई जाए जो धर्म को धारण करता है, जो सिर्फ सुनना भर चाहता है, जो अपने जीवन में अंगीकार नहीं करना चाहता, उसके लिए धर्म की बात तो मात्र कहने और सुनने की है, जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएगी। हमें इससे क्या संदेश लेना चाहिए, इतना ही कि धर्म तो जब जब भी हम सुने उसमें से कितना मैं धारण कर सकता हूं, ये अभ्यास करें, तभी जाकर के वास्तव में हमारे जीवन में धर्म आ पाएगा। इस तरह हम चाहें तो धर्म की भावना, धर्म की उपासना कर सकते हैं। धर्म की महिमा हम सबको मालूम है, और उस महिमा को ध्यान में रखकर और जितना अपने जीवन में सुबह से शाम तक हर काम में, चाहे घर में हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे मंदिर में हो, सब दूर मन में ऐसा ही प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, रत्नत्रय की भावना, वीतराग स्वभाव की प्राप्ति का भाव ये बना रहे, राग देश के बीच भी मैं रुक करके अपनी उस वीतरागता का अनुभव कर सकूं, तमाम बेईमानी के बीच भी मैं अपने ईमान को नहीं भूलूं, तमाम झूठे व्यवहार के बीच भी मैं अपनी सच्चाई को नहीं भूलूं, ये धर्म है। इस तरह यदि हम इस विचार को और दृढ़ बनाए तो ये विचार हमारे जीवन में धर्म लाने में सहयोगी बनेगा। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पद में विषकंटक गोता वो तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का दिन।